ये देह पंचभूतों से तैयार होती है, पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। जो शरीर विनाशी है, जन्म जन्मांतर का विनाशी है, उस विनाशी शरीर में आस्था क्यों रखना, विश्वास क्यों रखना? अरे सड़क पर चलते चलते एक सेकंड में ट्रक आया और खत्म कर गया देह को, इस देह की कोई वैल्यू नहीं। जैसे मच्छर शरीर पर बैठता है और पट से हाथ मार करके मार दिया जाता है, ऐसे बाप भी बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, ये देह अहंकार छोड़ो। नहीं भी छोड़ेंगे तो भी अंत में बरबस छोड़ना पड़ेगा। दुनिया के बड़े से बड़े नास्तिकों को, जिन्होंने एटमिक एनर्जी बना के रखी है, फोड़ने के भी साकार में निमित्त बनते हैं, बनाने वाला बनाता है, क्योंकि वो जब इस सृष्टि पर आता है तो नई दुनिया की स्थापना के लिए ब्रह्मा द्वारा जिन ब्राह्मणों की रचना रचता है, नई दुनिया की स्थापना भी करता है और साथ साथ एटमिक एनर्जी का निर्माण भी करवाता है। एटमिक एनर्जी का निर्माण उन देहधारी अहंकारियों के द्वारा ही कराया जाता है, जो देह अहंकार में बहुत चूर हुए पड़े, परंतु वो देह अहंकारी एटमिक एनर्जी बनाने वाले अथवा उस एटमिक एनर्जी का विस्तार करने वाले रशियंस, उन दोनों को ही ये पता नहीं चलता है कि ये ध्वंसात्मक बारूद हम अपनी अकल से तैयार करते हैं, अपनी बुद्धि से तैयार करते हैं, या बुद्धिमानों की बुद्धि वो परमपिता परमात्मा हमसे कराया जाता है। तो भगवान बाप जब आते हैं स्थापना के साथ साथ विनाशकारी और विनाशकारियों को प्रेरित करके वो विनाशकारी साधन भी तैयार कराते हैं। 1942 से पहले कोई को पता नहीं था कि दुनिया में ऐसी ध्वंसकारी कोई शक्ति एटमिक एनर्जी भी हो सकती है। अगर थोड़ा थोड़ा पता हो भी सकता है तो उन विद्वान विदेशियों को, जिन्हें जर्मन का वासी कहते हैं, जर्मन, मन तो है लेकिन जड़त्वमयी मन है। भारतीय शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन किया और अध्ययन करके जान लिया कि महाभारत काल में ऐसे यादव हुए थे जिनके पेट से मिसाइल रूपी मूसल निकले थे, जिन मूसलों से उन्होंने अपने कुल का भी संहार किया और सारी दुनिया का ध्वंस कर दिया। उस बात को बुद्धि में रख करके उनके दिमाग में ये बात आई कि ऐसी शक्ति का हम निर्माण क्यों नहीं कर सकते। तो जर्मन की राजधानी पहले दो हिस्सों में बटी हुई थी, पूर्वी जर्मन और पश्चिमी जर्मन। जो पूर्व के जर्मनी के लोग थे, क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है, ज्ञान सूर्य की बात है असल तो, और वो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि का निर्माण करता है। तो निर्माण करने की बात तो उनकी बुद्धि में नहीं आई देह अहंकारियों को, उनकी बुद्धि में ध्वंस की बात आ गई। और महाभारत प्रसिद्ध है, उन मूसल रूपी मिसाइल्स के नाम पर उन्होंने एटमिक एनर्जी तैयार कर ली, जो आज देश विदेश में मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं। बटन दबाओ और एक सेकंड में जिस शहर का विनाश करना चाहो विनाश कर दो। ये देवान के आधार पर स्वयं का भी भला नहीं होता है, देह अहंकार से दूसरों का भी भला नहीं होता, सारी दुनिया का भला नहीं होता, नुकसान ही नुकसान। तो देखो भगवान बाप आकर बताते हैं कि उन देह अहंकारी में अहंकारियों में आज उनकी आत्मा में इतनी भी शक्ति नहीं रही है कि जो ध्वंसकारी रचना उन्होंने तैयार की है एटमिक एनर्जी, उसका विस्फोट करने के लिए हिम्मत कर सके। जानते हैं क्या, हमने शुरुआत की तो दूसरे देश भी चुप नहीं बैठेंगे, और इस दुनिया का विनाश हमारे सामने आएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे। तो आत्मा की शक्ति क्षीण होने से भय पैदा हो जाता है। सबसे बड़ा भय तो द्वैतवादी द्वापर युग से देह की मृत्यु का होता है, जो भय दिन ब दिन द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक बढ़ता ही जाता है। भय आत्माभिमानी में पैदा होता है या देह अहंकारी में पैदा होता है, भय कहां से आता है? देह अभिमान से आता है या आत्माभिमान से आता है? कहां से आता है? अपने को देह समझने से भय आता है। आत्मा तो अविनाशी है, जब ये समझ में आता है कि आत्मा अविनाशी है, देह के विनाश होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता, तो भय कैसे आएगा? तो देखो दुनिया में देहधारी देह अहंकारी मनुष्यों के द्वारा जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक है जिन्होंने एटमिक एनर्जी तैयार की, उनको बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। बाप कहते हैं ये तो सब बुद्धू हैं। जिस मनुष्य सृष्टि डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काटने में लगे हुए हैं। ऐसे मूर्ख बुद्धि बाप आकर सत्य बात बताते हैं। इस देह अहंकार को छोड़ दो, प्रैक्टिस करो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझने की। और ज्योति बिंदु आत्मा समझकर इस आत्मा रूपी बैटरी को जो दुनिया का बड़े से बड़ा जनरेटर है, परमपिता परमात्मा शिव भगवान, उसी की शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब देहधारी धर्मगुरुओं के धर्मों को त्याग कर मामेकम शरणम ब्रज, मुझे एक परमपिता परमात्मा की शरण में आ जा। मैं तुझे सात दुखों से मुक्त कर दूंगा। दुख से मुक्त कर दूंगा, बुढ़ापे के दुख से मुक्त कर दूंगा और मृत्यु के दुख से भी मुक्त कर दूंगा। एक की बात नहीं है, सब मनुष्य आत्माओं को मुक्त करके अपने धाम मुक्त धाम में ले जाऊंगा, जहां देह का बंधन होगा ही नहीं। आत्मा निर्बंधन रहेगी। आत्माओं में जो जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हुए हैं सुख भोगने के, कोई में कम सुख भोगने के संस्कार हैं, कोई में ज्यादा सुख भोगने के संस्कार है। तो जो ज्यादा सुख भोगने की संस्कार वाली देव आत्माएं हैं, वो इस सच रूपी रंगमंच पर सतयुग में नंबरवार उतरती हैं, क्योंकि सुख भोगने की लालसा लेकर के, स्वर्ग में जाने की लालसा लेकर के, इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़ करके परम धाम जाती है। दूसरे धर्म के जो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स हैं, जो द्वापर से आते हैं, नरक की दुनिया में आते हैं, उनमें तो स्वर्ग भोगने के संस्कार ही नहीं है पूर्व जन्मों में। इसलिए अंत समय में महाविनाश के काल में जब वो बाप के घर में जाती है परम धाम, तो उनको ये संकल्प नहीं आता कि हम सुख की दुनिया में लौटेंगे। इसलिए अंतमते सो गति लेकर के अपनी आत्मा को परम धाम में स्थिर कर देती है। और जब स्वर्ग नष्ट हो करके इस दुनिया में नरक की दुनिया शुरू होती है, नर अर्थात मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई दुनिया, मानवीय धर्म पिताओं के द्वारा बनाई हुई दुनिया, उस दुनिया में वो आत्माएं प्रवेश होने के लिए मजबूर हैं, उनमें संस्कार ही ऐसे भरे हुए हैं, अपने अपने टाइम पर उस नरक की दुनिया में आती है और पार्ट बजाती रहती है। परंतु वापस जाने का रास्ता न देव आत्माओं को पता रहता है और न नरक में आने वाली मनुष्य आत्माओं को पता रहता है। इसलिए दुनिया की आबादी बढ़ती रहती है, वही आत्माएं बार बार जन्म मरण के चक्र में इस दुनिया में आती रहती है और नई नई आत्माएं भी परम धाम से उतरती रहती है। इसलिए हिस्ट्री में देखा जाए, सदैव इस सृष्टि पर मनुष्य आत्माओं की ही नहीं, कोई भी प्राणी मात्र की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। क्योंकि यहाँ के प्राणी यहीं जन्म लेते रहते हैं और ऊपर से आने वाली ढेर की ढेर आत्माएं इस शक्ति रूपी रंगमंच पर आकर के पार्ट बजाती है। जब बहुत मनारा बढ़ जाता है, लगभग सारी आत्माएं इस शक्ति रूपी रंगमंच पर आ जाती हैं, जिनमें ढेर की ढेर दुखदायी आत्माओं की संख्या बढ़ती जाती है, मक्खी मच्छर कीटाणु इनकी संख्या भी बढ़ जाती है। मनुष्यों की संख्या तो बहुत थोड़ी है, लिमिटेड, और उन मनुष्यों में भी देव आत्माओं की संख्या तो बहुत कम है, 500-700 करोड़ के बीच 33 करोड़ देवताएं मात्र गाई जाती है, जो सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक इस सच्ची रूपी रंगमंच पर दो दे आत्माएं थोड़ी थोड़ी संख्या में उतरती ही रहती। तो देखो, दुनिया में दुखदाइयों की संख्या, दुखदाई प्राणी मात्रों की संख्या बढ़ती है या सुखदाइयों की संख्या बढ़ती है? हैं? दुखदाइयों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती। तो अशांति बढ़ेगी या घटेगी? हैं? दुनिया में अशांति बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सुख शांति लोप होती जाती है, ऐसी स्टेज आती है कि इस दुनिया में वो दुखदायी प्राणी दुख की स्टेज में ही शरीर छोड़ते हैं। वो भगवान बाप को और भगवान बाप की दी हुई मत को, श्रीमत को पहचान ही नहीं पाते पूरा, और अपनी मनमत पर चलते हैं या तो धर्म पितायों देहधारियों की मत पर चलते हैं। इससे जन्म जन्मांतर दुख ही भोगते हैं। मूढ़ा जन्मने जन्मने, वो मूढ़ आत्माएं जन्म जन्मांतर दुख का वर्षा लेकर के ही आती है, स्वयं भी दुखी होती है औरों को भी दुखी करती है, और उनका अंत भी महाविनाश काल में अति दुख में स्टेज में होता है। अंतिम शरीर को त्याग करके बाप के घर में निर्वाण धाम में जब जाती है तो अति दुखमयी स्टेज होने के कारण उनकी आत्मा में वो संस्कार पक्का हो जाता है। नंबर बार कोई द्वैतवादी दुख की द्वापर युगी सृष्टि के आदि में आते हैं, कोई मध्य में आते हैं, कोई अंत में आते हैं। तो देखो, ये हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपने जन्म जन्मांतर का पार्ट नुदा हुआ है, और जन्म जन्मांतर के पार्ट को नूद करने के निमित्त स्वयं ही आत्मा बनती है। इसलिए कहा गया है गीता में कि आत्मा अपना शत्रु अपना मित्र स्वयं ही है। जब भगवान बाप आते हैं, सुख का वर्षा देते हैं, तो कोई तो उस बाप की कदर ही नहीं करती, वो तो बहुत कदर करती है, यहाँ तक कि कोई भी देहधारी धर्म गुरुओं में नहीं फंसते। न मम्मा, न बाबा, न दीदी, न दादी, न कोई दादा मिल, उनकी बातों पर सुनने मात्र से विश्वास नहीं करती, क्योंकि भक्ति मार्ग में ये रग पड़ी हुई है कि जो भी गुरु आकर के सुनाएगा सत्य वचन महाराज ठीक है, कृपा निदान सत्य है, दया निदान, झूठी बातों को भी स्वीकार तुरंत कर लेते हैं। इसलिए भगवान बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा ब्रह्मवाणी में बताया कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है, खास भारतवासियों ने, सबकी बातें सुनते रहते। जैसे एक परिवार होता है, परिवार में कौन सी आत्मा, कौन सा संबंध ऐसा होता है जो सबकी बातें सुनता है? कोई संबंध ऐसा होता है परिवार में? कौन? माता पति की बातों को भी सुनती है, बड़े बच्चे की बातों को भी सुनती है, मध्यम बच्चों की बातों को भी सुनती है प्यार से, और छोटे छोटे अंतिम समय में जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनकी बातें भी सुनती है। इसलिए भारत को मातृ प्रधान देश कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है, या भारत पिता के रूप में याद कहा जाता किया जाता है, है? भारत माता के रूप में याद करते हैं। ये मातृ प्रधान देश भारत ही है, और जितने भी विदेश हैं वो सब दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले पुरुष रूप में हैं। वो मातृ प्रधान नहीं है, पुरुष प्रधान होने के कारण उन्होंने धर्म खंडों में धर्म पिताओं का जन्म होता है पहले, फिर उनके फॉलोअर्स आते हैं धर्मावलंबी। तो पुरुष वृत्ति सहनशील ज्यादा होती है, या मातृ वृत्ति ज्यादा सहनशील होती है? आज भी संसार में क्या देखने में आ रहा है, माताओं में सहनशीलता ज्यादा है या पुरुषों में, पिताओं में सहनशीलता ज्यादा है? माताओं में ज्यादा सहनशीलता, पति की बात को भी सहन करती है, बड़े बच्चों की बात को भी सहन करती है, छोटे बच्चों की भी बात को, शैतानी को सहन करती है, बातों को सुनती है। तो ये मातृ प्रधान देश में भगवान बाप आते हैं, माताओं को अपना राइट हैंड बनाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ माताओं को ही बनाते हैं, जो कन्याएं हैं उनके लिए भी कहते हैं कि मैं कन्याओं को माता बना देता हूं और माताओं को पवित्र रहने वाली कन्या बना देता हूं। जब से ज्ञान में निश्चय बुद्धि बनती है, चिंता बसे ही। तो शिव शक्तियां गाई हुई है, शिव भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो इन मात्र शक्तियों को शिव शक्ति बनाते हैं। पहली पहली प्राथमिकता इन शिव शक्तियों को मिलती है। जो देवत्व का प्रधान गुण धारण करने वाली है, देवताओं का मुख्य गुण क्या है, है? क्या है? सहनशीलता। उस सहनशीलता सब गुणों का राजा है। जिसमें ये गुण आ गया उसमें सभी प्रकार के गुण आ जाते हैं। अभी एकदम देवत्व तो आ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव। कौन कहते हैं, हैं? कौन कहते हैं? आत्मा को बाप कहते हैं। आत्माओं के बाप को मनन चिंतन मंथन करने का अपना मन है, हैं? वो सोच विचार करता है, सोचता है या असोचता है? वो तो असोचता है, उसे सोच विचार करने की दरकार ही नहीं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है। वो सब कुछ जानता है, इसलिए सोचने विचारने की शक्ति की जरूरत ही नहीं। तो क्यों कहा मन मना भव? किसने कहा है? वो निराकार शिव जब किसी इस मनुष्य में मुकर्रर तन में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा कहा मत मना भव, मेरे मन में समा जा। क्या पुरुषार्थ कर है? मेरे मन में समा जा। तो जिस निराकार परमात्मा का आधार वो मुकर्रर रथधारी आत्मा बनती है, वो कहती है मेरे मन में समा जा। उसका मन कौन है? मन माने दिल। कौन है लगते जिगर? उसका मन किसके ऊपर फिदा होता है? पहले पहले है? हर बाप का मन किसके ऊपर फिदा होता है, है? मृत्यु पर्यंत तक किसके ऊपर फिदा रहता है? माता के ऊपर, नंबरवार छोटे बच्चों के ऊपर या बड़े पुत्र के ऊपर है? बड़े पुत्र के ऊपर फिदा होता है। सारी दुनिया भगवान के इस पार्ट को फॉलो करती है। भारत की हिस्ट्री को ही ले लो, जो भी भारत के राजाए हुए हैं हिस्ट्री में, उन्होंने अपने बड़े बच्चे को अपना दिल दे दिया, बादशाही दे दी, औरों को तो नहीं दी। इसको पालन करते हैं एक परमपिता परमात्मा को ही फॉलो करते हैं। जिसने बोला मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस, जो मनुष्य हैं वो मेरे मार्ग का ही अनुगमन करते हैं, मैं जो पार्ट बजाता हूँ नंबर वार मनुष्य उसी पार्ट को बजाते हैं। तो बताओ मन मना भव किसने कहा, कौन सी आत्मा ने कहा है? अरे अभी भी नहीं समझ में आया है? शिव बाबा ने कहा, शिव को अपना मन है, है? शिव ने कहा या जिसे बाबा कहा गया, ग्रैंडफादर, उसने कहा है? बाबा जिसे कहा गया, ग्रैंडफादर, बाबा को कहा जाता है। शिव का संबंध सिर्फ बाप का है या आत्माओं के साथ बाबा का है? बाप का है। बाबा तो तब बनता है या दूसरे संबंध तब बनते हैं जब वो साकार मनुष्य तन में आता है, मुकर्रर रथ में आता है, तो वो बाबा कहा जाता है, ग्रैंडफादर। वो ब्रह्मा का भी बाबा है, मुरली में बोला है, कोई बताए ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? रचना है। तो रचयिता रूपी बाप कौन है? ब्रह्मा का बाप कौन? भगवान की वाणी में पूछा गया तो जवाब देना चाहिए ना, कौन? ब्रह्मा का बाप परम ब्रह्म, क्या जो ब्रह्मा नामधारियों में परे से परे है, पहले से पहला है, वो परम ब्रह्म है। ब्रह्मा दादा लेखराज का भी बाप है, और वो बाप जब संपन्न स्टेज में आता है तब का ये गायन है, क्या क्या गायन है? मन मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा, मेरे मन की एक्टिविटी में समाजा, वाइब्रेशन में समाजा, वाचा में समाजा। कर्म इंद्रियों से जो कर्म किए हैं उन कर्मों में समाजा। तो कौन है मेरा मन? मन माने दिल, उस बाप का दिल कौन है, है? जिस दिल का दिल वाला बाप है, दिल वाला, वो दिल सदैव धड़कता है, चालू रहता है, चलायमान है। इस मनुष्य सृष्टि में, द्वैतवादी दुनिया में कभी भी स्थिरियम नहीं है। कौन है वो दिल या मन है? ब्रह्मा दादा लेखराज। मनुष्य सृष्टि का 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि नंबर वार जो है उनमें सबसे पहला पत्ता बड़ा बच्चा कौन है? ब्रह्मा वाली सोल, जिसे शास्त्रों में हे कृष्ण नारायण वासुदेव नाम दिया है, वो कृष्ण नाम दिया है, नारायण नाम दिया है, न जानने के कारण उसका नाम दे दिया है। वो शास्त्रकार नहीं जानते कि कृष्ण को कृष्ण बनाने वाला 16 कला संपूर्ण कौन है, कौन 16 कला संपूर्ण उसे बनाता है। जो स्वयं कलातीत है, कलाओं से भी परे है, वो बनाता है, या जो कलाओं में गिरते रहते हैं वो बनाते हैं। जो कलातीत है, सूर्य ही कलातीत है, वो ज्ञान सूर्य चैतन्य आत्मा कलाओं से परे है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जो कलाओं से परे है वो ही कल्प का अंत करने वाला, महाविनाश करने वाला है। जो कलाओं में बंधने वाले हैं, जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, वो इस कल्प का अंत नहीं कर सकते, चतुर्भुजी का अंत कर ही नहीं सकते। वो ही अंत का और वो ही आदि का निमित्त बनता है। जो निमित्त बनता है माने साकार बनता है, वो मनुष्य शक्ति का हीरो पार्टधारी है। उसका मन मनुष्य शक्ति का पहला पत्ता है। जो सृष्टि निर्माण काल में आदि में पीपल के पत्ते पर दिखाया जाता है कि कृष्ण सृष्टि के आदि में इस संसार सागर में पत्ते के ऊपर आया, हल्के फूल के रूपी नैया के रूप में आया। वो हल्की फुल्की नवैया पीपल का पत्ता कौन है? चैतन्य पत्ता है। कौन है जो बहुत हिलता डुलता है? पीपल का पत्ता थोड़ा सा भी हवा का झोंका आएगा और हिलेगा जरूर, और वृक्ष के पत्तों में ये गुण नहीं होता है। तो वो मन रूपी पत्ता कहो, दिल रूपी पत्ता कहो, दिल्ली दिल कहो, जिस पर द्वैतवादी द्वापर युग से ही विदेशियों के आक्रमण होते रहे हैं, सभी विदेशियों ने, सभी धर्मावलंबियों ने उस दिल्ली रूपी दल के दिल के ऊपर राज्य किया है और मनमाना राज्य किया है। खून की नदियां बहाई हैं और खून की नदियां बहा करके भी राज्य किया है। ऐसी वो दिल्ली रूपी दिल है भारत की राजधानी, जिसके लिए महावाक्य है कि दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाता है। भारत के सभी शहर छोटे बड़े दिल्ली को ही फॉलो करते हैं। वो दिल्ली रूपी दिल है, उसकी धड़कन का सारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिस जमीन को भारतवासी भारत माता समझते हैं, माता समझते हैं। माता समझते हैं, इसीलिए उस दिल्ली रूपी दिल में ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करके, अपूर्ण आत्मा प्रवेश करके उसका संचालन करती है। अपूर्ण रूप में जब साकार शक्ति पर पार्ट बजाती है तो वो अपूर्ण आत्मा तामसी रूप भी धारण करती होगी, और तामसी रूप धारण करती है तो उस आत्मा के शरीर की पूजा नहीं होती है, परंतु वही आत्मा शरीर त्याग करके स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, त्याग करके कोई माता में प्रवेश करके पार्ट बजाती है जिसे जगदम्बा कहा जाता है, जिसका अर्थ एक ही है, चाहे ब्रह्मा कहो बड़ी माँ और चाहे जगत की अम्मा कहो जगदम्बा, तब वो ब्रह्मा की आत्मा भी उस शरीर के द्वारा देवी के रूप में पूजी जाती है। पूजा का आधार पवित्रता ही होती है। कैसी पवित्रता? देह की पवित्रता, देह की इंद्रियों की पवित्रता, वाचा की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता नहीं, सर्वोपरि पवित्रता है वाइब्रेशन की पवित्रता। वो वाइब्रेशन उसके अंदर समाया हुआ रहता है जो वो जगदम्बा की आत्मा अपने सात्विक जीवन में परमपिता परमात्मा को फॉलो करती है। उस समय उसे दुर्गा कहा जाता है, दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा, वही मात्र शक्ति जब तामसी बनती है तो महाकाली बन जाती है, कलमुही बन जाती है, काला मुंह धारण कर लेती है। भले काला मुंह धारण करती है दुनिया के दिखावे के लिए, परंतु दिल के अंदर वो आदि वाली छाप जो परमपिता परमात्मा की पड़ती है वो भूलती नहीं है। दुनिया की कोई भी कन्या हो, पहली पहली बार जिसका ठप्पा लग जाएगा अधिकार का, उस अधिकारी को जीवन भर नहीं भूलती। ऐसे ही वो जगदम्बा है, वो भी कन्या है, जो भी देवियां हैं वो कन्या के रूप में दिखाई जाती है, उनका रूप माता के रूप में नहीं दिखाया जाता। हाँ, अगर देह की दृष्टि से देखा जाए, देहभान की दृष्टि से देखा जाए तो ऊपर ऊपर ये पता लगेगा कि वो माता का भी रूप धारण करती है दैहिक धर्मों के आधार पर। नाम ही है जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा माने सारे विश्व धर्मों की अम्बा, सभी धर्मखंड वासियों की अम्बा, सिर्फ भारतवासियों की अम्बा नहीं, तो उन सभी धर्मावलंबियों को वो अपनी गोद में स्थान देती है, जो माता का स्वभाव है। कैसा भी खराब से खराब लुच्चा लफंगा चोर डकैत शराबी कराबी कबाबी बच्चा होगा, उसको भी अपने दिल के नजदीक रखना चाहेगी, अपने से दूर नहीं रखना चाहेगी। तो ऐसी मात्र शक्ति जो वाइब्रेशन से सदैव इस ऊंच से ऊंच को याद रखती है, इसलिए उसकी मूर्तियों में, महाकाली की मूर्ति में, मस्तक में जो भी पुरानी पुरानी मूर्तियां मिली हैं, उनमें शंकर को दिखाया हुआ है, जगत पिता को दिखाया हुआ है, जिसकी छाप पहली पहली पड़ती है, जीवन भर भूल नहीं सकती, भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकती। इसलिए वो पवित्रता उसकी पूजी जाती है, वाइब्रेशन की पवित्रता पूजी जाती है, पवित्रता की ही पूजा होती है। अपवित्र मनुष्यों की राक्षसों की पूजा थोड़ी ही होती है, पवित्र देवताओं की पूजा होती है। तो देखो ये पवित्रता की पावर, परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर साकार में आकर के, जिन्हें शिव की शक्तियां कहा जाता है, उन शक्तियों में प्रैक्टिकल में आकर के भरता है, और वो पावर सबसे जास्ती जगदम्बा भरती है। नेत्रों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा, संपूर्ण शरीर के द्वारा वो भगवान बाप जो प्रतिपति कहा जाता है, प्रकृति अर्थात प्रकृष्ट रूप है जिसका, वो कृति रूपी रचना जो दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है, शक्ति है, उसमें भरता है, प्रैक्टिकल में भरता है। ऐसे नहीं ज्ञान के द्वारा भरता है, ज्ञान जानकारी बुद्धि का विषय है, और वो तो साक्षात शरीर में आकर के शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सारी शक्ति इस मनुष्य शक्ति में भरता है। 500-700 करोड़ में भी नंबर वार वो शक्ति जाती है, योग शक्ति कहो, जानकारी अर्थात ज्ञान की शक्ति कहो, हर मनुष्य आत्मा में जाती जरूर है, परंतु मुख्य वो 16,000 शक्तियां गाई हुई हैं, गोपियां गाई हुई है, जो भी नाम है शास्त्रों में काम के आधार पर पड़े हैं। उन गोपियों ने भगवान बाप के साथ प्रैक्टिकल संबंध जोड़ा है, प्रैक्टिकल कहा ही जाता है शरीर के साथ, और संबंध जोड़ करके शक्ति ग्रहण की है, इसलिए वो शिव शक्ति कही जाती है। कोई मानवीय शक्ति नहीं है, किसी राक्षस की शक्ति नहीं है। ऊंचते ऊंचे एक भगवान बाप की शक्ति है। अब जितनी जो वाइब्रेशन की पवित्रता धारण करे, बुद्धियों की पवित्रता को धारण करे, वो उतनी ही पावरफुल बन जाती। इसलिए नाम पड़ता है गोप गोपी। कोई कहे गोप नाम भी तो है, भले गोप नाम भी है जो पुरुष को इंडिकेट करता है, परंतु वो पुरुष आत्माएं भी पूर्व जन्म में स्त्री रूप धारण कर सकती हैं या नहीं धारण कर सकती हैं। आगे आने वाले जन्म में स्त्री रूप धारण कर सकती हैं, इसलिए वो 16,000 खास गोपियां गाई हुई, गौएं गाई हुई हैं, वो भी विदेशी गौएं नहीं, भारत की गौएं। ये भारत की कन्याएं माताएं हैं, जिन्हें माँ बाप जन्म जन्मांतर जिस खूंटे से बांधते रहे, जीवन भर उस खूंटे से बंद करके रही, इतनी सीधी साधी, इतना कोमल पार्ट बजाने वाली वो कन्याएं माताएं हैं, जो शिव की शक्तियां बनती हैं। उनमें प्रधान शक्ति है जगदम्बा, उसके भी दो रूप हैं, एक आत्मा और एक शरीर। शरीर है देह है, देहंकार रूपिणी, देहंकार में आकर के जब मार काट मचाती है तो सारी सृष्टि जो पापियों से भरी हुई है, दुखदाइयों से भरी हुई है, उन सब का विनाश करा देती है देहंकारियों का। इसलिए गाया हुआ है खास करके सिख धर्म में, राज करेगा खालसा, खालिस पवित्र, माना भगवान की दृष्टि में पवित्रता का मुख्य रूप वाइब्रेशन है या कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां हैं। क्या है मुख्य रूप? है वाइब्रेशन, बुद्धि से वाइब्रेशन बनते हैं। मनुष्य नंबरवार बुद्धिमान होते हैं, उन मनुष्यों में कोई विशेष ग्रुप सूर्यवंशी ग्रुप है जो बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान से प्राप्ति करता है, जिन्हें रुद्रमाला कहा जाता है। रुद्र अर्थात रौद्र रूप धारण करने वाले, रौद्र रूप धारण करने वालों में भी मुखिया है, जिसे रुद्र भगवान शंकर कहा जाता है भक्ति मार्ग में। परंतु गलती से शंकर और शिव आत्मा को एक ही समझ लिया। नहीं, शिव अलग है, सर्वोपरि है, और शंकर आत्मा अलग है। शंकरण का पाठ बजाने वाली, सत्व प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, तीनों गुणों का संघात है शिव, सिर्फ सत्व गुण का संघात। उसमें राजसीपन और तामसीपन कभी आता ही नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें इन तीनों गुणों का समावेश होता है। तो ये सारी शक्ति, क्योंकि सारी मनुष्य शक्ति का जो बीज है वो त्रिगुणमयी माया से भरपूर रहता है। सदैव नहीं, समय के अनुसार। सत्व प्रधान है तो सात्विक गुण प्रधान है, रजो प्रधान द्वापर युगी द्वैतवादी सृष्टि है तो रजस प्रधान है, और तमो प्रधान सृष्टि है तो वो बीज मनुष्य सृष्टि का सबसे जास्ती तमो प्रधान बन जाता है। इसलिए बोला कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? माना सुखदाई दुनिया का भी बीज एक है और दुखदाई दुनिया का भी बीज एक ही है, और वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। आत्माओं का परमपिता नहीं है। ओम शांति।